विश्व यूक्रेन और रशिया के बीच की गतिविधियों को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है। एक लंबे समय से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विश्वास के बारे में डटे रहे हैं कि यूक्रेन प्राचीन रूसी भूमि पर बैठा है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। हाल ही में यूक्रेन की सांसद ने राष्ट्र आपातकालीन लागू कर दिया है, और वहीं रशिया ने यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया और कई पश्चिमी देश कह रहे हैं कि रशिया कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर पूरा हमला शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पुतिन को ठग और बुली यानी धमकाने वाला करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार बाकी अन्य सहयोगी देशों के साथ रशिया के प्रमुख राजनीतिक ताकतों पर प्रतिबंध लगा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यूक्रेनियन लोगों के लिए वीजा आवेदनों को तेजी से ट्रैक करने का फैसला भी सुनाया है, ताकि वे लोग अपने परिवार के पास ऑस्ट्रेलिया आ सकें। सरकार का कहना है उन आवेदनों का मूल्यांकन तत्कालिकता के साथ किया जाएगा। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में रूसी राजदूत एलेक्सी पावलोवस्की को फॉरेन अफेयर्स विभाग में ले जाया गया। ये बैठक बंद दरवाजों के बीच आयोजित की गई थी, मगर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बाहर खुलकर बोल रहे थे।
We can't have some suggestion that Russia has some just case here that they're prosecuting. They're behaving like thugs and bullies, and they should be called out as thugs and bullies.
प्रधानमंत्री कहते हैं कि रशिया का ये हमला अनुचित और अकारण है।
Quite sadly and tragically, the sheer force of that violence of a thug and a bully is about to be impacted upon the people of Ukraine.
Australia ने रशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 8 व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा की है। कहा जाता है कि विदेश और रक्षा मंत्रियों सहित शासी अभिजात वर्ग के लोगों ने इस कदम को लेने के लिए उकसाया है।
With the United States and Canada and the United Kingdom and many other countries, European Union, we'll be adding names to the list, I can tell you. And we'll be ratcheting it up further to potentially other areas of economic activity.
Donetsk और Luhansk के यूक्रेनियन क्षेत्रों में सीमा प्रतिबंध निर्देशित किए जाएंगे, जिसके चलते परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार, तेल, गैस और खनिज भंडार के साथ साथ कई रूसी बैंकों पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के उच्च राजदूत वोलोडिमीर शलेबिस्की ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद की है कि इन प्रतिबंधों का विस्तार किया जाएगा।
At this stage, it's really important to keep pressure on Kremlin. So sanctions is the cornerstone of that pressure from the international community.
ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक बार फिर अपने लोगों से यूक्रेन को तत्काल छोड़ने की अपील कर रही है। 184 नागरिकों ने दूतावास में पंजीकरण करा है, लेकिन माना जाता है कि 1400 अभी भी खतरे के क्षेत्र में हैं।
People who are in the firing line there in Ukraine, and they're in the firing line of Russian guns and Russian tanks and Russian planes and Russian missiles.
और विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीज का कहना है कि उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया गया है।
It's important to give Russia a clear message that all Australians stand united against Russian aggression and in support of the people and the country of Ukraine.
ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक पद अब बंद हैं और दूतावास के अधिकारियों को खाली करा लिया गया है, लेकिन सरकार वादा कर रही है कि मानवीय मार्गों को सुरक्षित करने की कोशिश करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
They will go to the top of the pile, and I've asked for those to be concluded urgently. There are some 430 roughly applications from Ukrainian citizens to come to Australia.
अब ऑस्ट्रेलिया रूसी सरकार की जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जो ऑनलाइन होने की संभावना है। गृह मंत्री कैरन एंड्रयूज चेतावनी दे रही हैं कि इस कार्रवाई से बड़ा नुकसान हो सकता है।
We are concerned about the potential for a cyber attack, particularly on our critical infrastructure in Australia. Now, that doesn't mean that we're going to go lightly in relation to our response to Russia.
यूक्रेन अब रशिया में अपने नागरिकों को तुरंत घर आने के लिए कह रहा है, क्योंकि मॉस्को ने कीव में अपने दूतावास को खाली करना शुरू कर दिया है। देश की सांसद ने बुधवार को आपातकालीन की स्थिति को मंजूरी दे दी। ये गुरुवार से प्रतिबंधों के साथ लागू होगा और 30 दिनों तक चलेगा। यूक्रेनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव अलेक्सी डोनिलोव का कहना है,
The state of emergency will include reinforcing maintenance of public order and security of critical infrastructure. It might include restrictions on certain types of transport and additional transport checks. It might also include control of individuals' documents.
ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरी स्पेन ने पुतिन के बयान की आलोचना की, जिसमें पुतिन ने कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेन में शांति सैनिकों के रूप में काम कर रहे हैं। सेनेटर पेन चेक राजधानी प्राग से बोल रही थी। वे कहती हैं,
There's absolutely no justification for Russia's unprovoked military actions. It is coercion, it is bullying by an authoritarian power against a democratic neighbor, and it will not be accepted by responsible nations that want to preserve an open, stable and secure world.
ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेनी दूतावास के प्रमुख वोलोडिमीर शेलेकविस्की ने SBS समाचार को बताया है कि यूक्रेन ऑस्ट्रेलिया के रशिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की सराहना करता है। वे कहते हैं,
Ukraine is very grateful to Australian government for the recent announcement on new sanctions against Russia. It's really important for us to have unity and determination among our partners.
SBS News की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।